Shanti.
Shanti.
Very good morning.
Good morning.
Sabhi khush hai? Okay. Kuch dukh hai jeevan mein? Nahi hai? Bahut achhi baat. Dekhiye, hum sabhi chahte hain ki jaldi se jaldi hum sabhi sampann aur sampurna bane. Sampann banna ya sampurna banna, ये जो दो शब्द है संपन्न और संपूर्ण का मराठी देखिए, जो संपन्न और संपूर्ण ये जो दो शब्द है, इस दो शब्दों में इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि हर चीज को संपन्नता और संपूर्णता की ओर लेके जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम संपन्न बने, लेकिन संपन्न बनना यानी क्या करना है? उस ऊर्जा को हमारे अंदर पर्याप्त धारण करना, जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण है ऊर्जा की कमी। कौन सी भी ऊर्जा होने दीजिए, फिर धन का अभाव है, रिलेशन में तान तनाव चल रहा है, कहेंगे कि समस्याएं चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम है, सर्विस है, बिजनेस है, जो भी है, पढ़ाई है, किसी में भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसका कारण एक ही है, ऊर्जा का अभाव। जब हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो चीज अपने आप अपने जीवन में आती। आपकी जैसे इंटेंसिटी होगी, एनर्जी की लेवल जैसे बढ़ेगी आपकी, उस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा। तो एनर्जी की लेवल बदलना के बहुत सारे रास्ते है, जैसे कि आप सोचेंगे बाहर मेडिटेशन करते, ये करते, वो करते, कोई कोई तो और भी उपाय करते हैं, खाने से भी, भोजन से भी एनर्जी चेंज हो जाती है। उसके बाद भी आप महसूस कर पाएंगे, अगर एनर्जेटिक भोजन हम करते हैं तो हमारा ऑरा चेंज होता है, ऑरा चेंज होने के कारण हमारे जीवन में आसपास जो आत्माएं आती हैं, उस ऑरा की एनर्जी के हिसाब से हमें आत्माएं मिलती है। हमारे जीवन में जो जो आत्माएं आती, यहां तक आप रास्ते से गुजर रहे, आपका ध्यान उसी आत्मा की तरफ जाएगा जिसकी और आपकी एनर्जी सेम है। अगर उसकी और आपकी एनर्जी सेम नहीं है तो आपका ध्यान उस आत्मा की तरफ जा ही नहीं सकता। मतलब हम हमारी एनर्जी से दुनिया को देख रहे हैं और वही, मतलब वही रिटर्न में हमारी तरफ आ रहा है। वही लोग आपकी तरफ देख पाएंगे जिनकी एनर्जी आपकी एनर्जी सेम रहेगी। सारा ऊर्जा का खेल है, सारा एनर्जी का खेल है। कोई भी चीज का, एक सिंपल कपड़ा लेने से, भोजन खाने से लेकर बड़े महल में रहने तक, उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आपकी एनर्जी, अभी भी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, एनर्जी लोएस्ट केस में आ चुकी है, लोएस्ट स्टेट में आ चुकी है, जिसके कारण उसकी जो स्थिति है एनर्जी की, उसी के अनुसार अपना जीवन ढल रहा है। हम कहेंगे कि हमारी अपेक्षाएं यहाँ है और हमारी एनर्जी यहाँ है, इम्पॉसिबल चीज। तो हमारी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी जो साइंस का रिसर्च हो चुका है कि आत्मा कैसी है, कहाँ है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, शक्तियां हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड कहाँ है, इनका खेल कैसे चलता है, इन सारे बातों से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। दुनिया में आप देखेंगे, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी बात है एकांत। कभी कभी कहते हैं कि एकांत अच्छा नहीं है, लेकिन एकांत ही एक ऐसी चीज है जो सभी प्राप्तियां कराती है। क्योंकि जब एकांत में कोई रहता है तो इतना भरपूर हो जाता है कि जब बाहर निकलता है उस एकांत से तो सबको भरपूर कर देता है, क्योंकि उसने उस एकांत में जो पाना था सो पा लिया। लेकिन उस एकांत में सिर्फ बैठने से फायदा नहीं होगा, खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरी वाचा शक्ति की एनर्जी कहाँ तक बढ़ी है, दृष्टि की एनर्जी कहाँ तक बढ़ी है, सुनने की एनर्जी, संकल्पों की एनर्जी, कर्मों की एनर्जी। आज भी हम कहते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियों से अलग अलग न चाहते हुए कर्म हो जाते हैं। इसका मतलब उस हाथ से अगर कोई विकर्म हो जाता है, इसका मतलब अभी तक हाथ की एनर्जी लो है, आत्मा की एनर्जी लो है, वो हाथ के ऊपर वर्क कर रही है, उसके कारण हाथ कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मुख की एनर्जी लो है, उसके कारण मुख कंट्रोल में नहीं आ रहा है। नहीं तो जिस चीज की एनर्जी हाई हो जाएगी उससे सत्कर्म ना हो ही नहीं सकता। अब ट्राई करके देख लीजिए। तो बस हमें एनर्जी को बढ़ाना है, एक सही विधि से अगर हम जाएंगे एनर्जी को बढ़ाते तो जीवन अपने आप खुशहाल बन जाता है। खुशहाल बनाने की आवश्यकता नहीं, अगर पहले से ही खुशहाल है हमने उसे दुखी बनाया, एनर्जी को कम करते हो। ईश्वर ने जब ये जीवन दिया तो दुख भरा नहीं दिया था, उसने सुख भरा दिया था। हमने सारा समाप्त किया गलत कर्मों में, उसके कारण अभी हम कह रहे कि दुख हमें उसने दिया, उसको ब्लेम करते कभी कभी, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। कहते हैं ना बाबा कभी कभी कि मैंने तो आपको अपार धन दिया था, क्या किया उसका? बाप ने बाप का वर्षा इतना दिया था, फिर बच्चों ने उसको कहा उड़ा दिया। वर्षा है ना अंदर का, यहाँ की एनर्जी लेवल जैसे कम होती है वैसे बाहर की एनर्जी लेवल, उसके हिसाब से सारा जगत चलता है। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपका ऑरा, तो आपके आसपास जिनका ऑरा कम है वो लोग आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। आप कभी अनुभव करके देखिए, आ ही नहीं सकते क्योंकि उनको फ्रिक्वेंसी सस्टेन ही नहीं होगी, आपके साइड से ही निकल जाएंगे, आपसे बात करने की भी ताकत नहीं रहेगी उनमें, क्योंकि वो एनर्जी सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे हमारी एनर्जी होती वैसे ही हमें लोग मिलते हैं। और दूसरी बात, इसमें दूसरी गहराई वाली बात कि जिस प्रकार से हमारी एनर्जी उस प्रकार से लोग तो मिले, लेकिन उस एनर्जी की क्वालिटी जैसी है उस प्रकार से लोग हमसे बिहेव करेंगे। अभी आज भी देखिए, विश्व में किसी आत्मा में ताकत है दादी जानकी जी से डिसरिगार्ड से बात करने की? बट पता नहीं ये कौन है, लेकिन कोई भी आत्मा उनके सामने आती है तो तुरंत माइंड चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और कोई रास्ते से कोई जा रहा है ऐसे है, उसको कोई कुछ भी बोल देता है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी। सारा खेल है एनर्जी का। हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन जीवन का जो रूट कॉज है उसे नहीं बदल रहे। जीवन जरूर बदलेगा। अभी छोटी छोटी बातें, जैसे कहेंगे शरीर की कोई भी बात है, बीमारी शरीर में नहीं आती, बीमारी यहाँ आती है। आज भी हम किसी ओरा एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हमें अभी आज जो ओरा उसने चेक किया ओरा, तो बता देगा 2 महीने बाद आपको कौन सी बीमारियां होने वाली, क्योंकि वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में आ चुकी है। 2 महीने पहले जो थॉट क्रिएट किए थे उसकी एनर्जी अभी बॉडी में प्रेजेंट है, उसका रिफ्लेक्शन मैनिफेस्टेशन हमारे फिजिकल शरीर में आ जाएगा। इसलिए हम जो थॉट क्रिएट करते हैं उससे ऊर्जा बनती है, उस थॉट को सही डायरेक्शन देना हमारा काम है। कभी आप सोचिए आत्मिक स्थिति क्या होती है। ये जो प्राचीन राजयोग है ये साधारण बात नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए खुद। बाबा ऐसे नहीं कहते कि प्राचीन राजयोग सारी दुनिया सीखना चाहती है, इसमें बहुत ताकत है। अपने आप को आत्मा समझ के, एक थोड़ा बेसिक हम ले लेते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के जानबूझ के आप कोई विकर्म करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे होता है क्या, ट्राई करके देख लीजिए। आत्मा समझ के किसी के लिए गालियां अपशब्द बोलने का प्रयास कीजिए, या फिर आत्मा समझ के बुरे संकल्प उठाने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा। क्योंकि आत्मिक स्थिति ही स्वयं में ऐसी स्थिति है जिसमें नेगेटिविटी है ही नहीं, 100% पॉजिटिविटी है। आत्मिक स्थिति में आने के बाद अगर नेगेटिविटी आती ही नहीं, 100% पॉजिटिव आते हैं, तो क्यों ना हम इस स्थिति में आ जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अपने आप। अभी तक के स्टडी में ये भी देखा गया है, अगर एक सेंटर में एक क्लास में सिर्फ 3 आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए तो सारा सेंटर अपने आप आ जाएगा। एक घर में एक आत्मा पूरी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए तो सारा घर परिवर्तन हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपसे जो पॉजिटिव एनर्जी एमिट हो रही बाहर निकल रहे हैं उसको कोई भी निगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं होगी निगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि जो एनर्जी निकलती है सारा खेल, फिर से कहते हैं सारा खेल एनर्जी का है, जो आपसे निकल रहा है वही आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है और कुछ नहीं। तो आत्मिक स्थिति में आने के बाद सारा माहौल अपने आप बदल जाता है। इस स्थिति की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, फिर हम जीवन में पाएंगे कि क्या बदलाव होते जा रहे हैं। कोई भी आत्मा अगर 1 मास के लिए भी आत्मिक स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास करे, आत्मिक स्थिति, तो देखिए जीवन कैसे बदल जाते हैं, पूरी जीवन बदल जाएगी। अब 1 मास पहले क्या थे और 1 मास के बाद क्या है, जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि आपने आपकी एनर्जी रेज की। आज भी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी माइंड की एक्सरसाइज की जाती है एनर्जी हाई करने के लिए। म्यूजिक थेरेपीज है, जो म्यूजिक सुनने के बाद आपके जो वेव्स हैं बीटा अल्फा थीटा डेल्टा सारे नेचुरली वेव फ्लो होते हैं, जैसे कि नेचुरल वेव्स में वो चलते हैं, नेचुरल फंक्शन करते हैं, वो सारे फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन उनको वो टेम्पररी ऐसा है। जैसे आत्मिक स्थिति में आते हैं तो परमानेंट होना शुरू हो जाता है, हम खुद कर रहे हैं वो। जब तक म्यूजिक है तब तक वो ठीक है, म्यूजिक का इफेक्ट एक घंटा दो घंटा तीन घंटा रहेगा, लेकिन ये पढ़ाई तो अपने साथ है, या कैसे भी करके कुछ भी करके हम खुद को सेटल कर सकते हैं। तो आत्मिक स्थिति में आकर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, हर चीज का एक्सपेरिमेंट। ज्ञान शब्दों का होता है और ज्ञान की अनुभूति जिसे अनुभव है उसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है। किसी ने कुछ कहा लेकिन उसका अनुभव ही नहीं किया तो ज्ञान नहीं होता कभी भी, बस वो किताबों की बातें होती है, सुनी हुई बातें होती है, किसी ने कही हुई बातें होती है, वहां तक सीमित रहती है। उससे अगर परे जाना है तो उसका अनुभव करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं गुड़ मीठा है तो अनुभव करना पड़ेगा कि गुड़ मीठा है, वैसे आत्मिक स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या ताकत है, हम अभी भी चाहते हैं कि हमारे सारे दुख समाप्त हो गए, लेकिन दुख का जो कारण है रूट कॉज है आत्मिक स्थिति, उसको नहीं हम चेंज कर पा रहे। उसको अगर चेंज कर दे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और एक गहरी बात, हम अगर चाहते हैं कि हमारे दुख समाप्त हो तो हमें एक बात का त्याग करना पड़ेगा, छोटी सी बात है, वो है सुख। कलयुग के अंत में हम सभी सुख चाहते हैं, कैसे मिलेगा, इम्पॉसिबल बात है। कलयुग तो दुखों की दुनिया है, वहां कहेंगे कोई हमारा रिगार्ड करे, हमारा रिस्पेक्ट करे, जहां भी जॉब पर जाते हैं बिजनेस करते हैं कहते कि सभी मेरे से अच्छा व्यवहार करे, नहीं हो सकता। फिर से वही बात आ रही कि आपकी एनर्जी के अनुसार ही आपसे व्यवहार होगा। अगर एनर्जी हाई है, आज भी कहा ना मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्रदान में कहा है बाबा ने मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगना तो किसका काम है, बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के बच्चे कभी मांगते नहीं, बाबा से भी मांगने की आवश्यकता नहीं। सच में मांगना यानी मांगना होता है, वो किसी से भी मांगो, बाबा से मांगिए या किसी और से मांगना यानी मांगना होता है। तो मांगने की किसी भी बात की आवश्यकता नहीं, उसको तो ऑलरेडी पता है सब कुछ हमारे जीवन में क्या हो रहा है, बस हम चेंज नहीं होना चाहते, हमारा इंटेंशन नहीं है चेंज होने का। जिस आत्मा का इंटेंशन है अंदर से चेंज होने का, उसे प्रकृति भी नहीं रोक सकती चेंज होने से, बदलाव लाने से। तो इसलिए हमें अंदर से चेंज होना पड़ेगा। राजयोग ऐसी पढ़ाई नहीं कि जैसे अदर इंस्टीट्यूट है, आध्यात्मिक संस्था है, कि आओ रोज पढ़ो, भजन कीर्तन करो, जब चाहे ईश्वर को याद करो, नहीं जमेगा तो मत करो, नहीं, ये पढ़ाई है प्रॉपर पढ़ाई से ही जाना पड़ेगा। आज भी हम सभी आत्माएं कहते हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं विश्व का, परिवर्तन मांगना, परिवर्तन चाहना तो ठीक बात नहीं, चलो हम कहते कि संकल्प करके परिवर्तन का, तो परिवर्तन का संकल्प यानी किताब लिखने का संकल्प है, हम बड़ी किताब लिखने का संकल्प कर रहे हैं। लेकिन किताब लिखने के लिए एबीसीडी सीखना बहुत आवश्यक है, एबीसीडी के बाद वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से चैप्टर बनेंगे और चैप्टर से फाइनली किताब। किताब तो बहुत दूर की बात है, पहले एबीसीडी पहला पाठ आत्मा का पक्का करना पड़ेगा, तब जाके किताब बनेगी, नहीं तो किताब नहीं बन सकती। कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, 100 साल से तो नहीं, लेकिन कितने भी साल से चलता रहे ज्ञान में, किताब नहीं बन सकती जब तक पहला पाठ पक्का नहीं होता। तो जिस आत्मा का पहला पाठ पक्का हो गया उसने 100% परिवर्तन की किताब लिख दी, क्योंकि आत्मिक स्थिति में 100 परिवर्तन छिपा हुआ है। आज भी दुनिया में जितने प्रॉब्लम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का ही सारा खेल। हमारा जो रेजोनेंस है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, इस दुनिया में आज जो करप्शन चल रहा है, जो पाप चल रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है पता है? यस, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बहुत से आत्माओं को लगता नहीं वो पाप कर रहे, नहीं, आपको उसका सिंपल लॉजिक बताते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं से, मम्मा पापा से अष्टरत्न जुड़े हुए हैं, अष्टरत्नों से 108 जुड़े हुए हैं, 108 से 1008 जुड़े हुए हैं,
1008 से 16108 है, 16108 से 9 लाख, 9 लाख से 33 करोड़, और 33 करोड़ से सारी दुनिया चलेगी। तो यहाँ जो थॉट चलेगा, मम्मा बाबा तो संपूर्ण होके ऊपर चलेंगे, अष्टरत्न में से बहुत सी आत्माएं चलेगी, बचे 108। तो 108 के जो थॉट चल रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो बहुत पावरफुली ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी सपोज हमसे किसी की लिंक है, मतलब इनसे लास्ट की लिंक है ना, तो यहाँ पहले वाली आत्मा ने, अगर जस्ट पहले वाली आत्मा ने, लॉजिक आपको समझाते हैं फिर आप चेंज कीजिए आपकी लाइफ को। पहले वाली आत्मा ने जस्ट एक इरिटेशन का थॉट क्रिएट किया, एक्सप्रेस भी नहीं किया, बस थॉट क्रिएट किया अंदर ही अंदर, इरिटेशन का, किसी चीज की वजह से इरिटेशन हो गया। तो उससे जुड़ी हुई जो लास्ट वाली आत्मा है वो मर्डर कर दी। जो रेजोनेंस ट्रांसफर होगा ना वो मल्टीप्लाई होके जाएगा लास्ट में, उसको पता नहीं मैंने मर्डर क्यों किया, लेकिन वो मर्डर कर देगी। उसको इंट्यूशन किसने दिया? हमने दिया। तो हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा इसे नहीं कहता कि दुनिया बदलने वाले आप बदल जाओ दुनिया बदल जाएगी। बाबा क्यों नहीं कहता कि 700 करोड़ बदलने के बाद दुनिया बदल जाएगी? नहीं होगा। हम रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमने एक गुड थॉट क्रिएट किया, समझ लीजिए इतनी सारी आत्माओं में गुड क्रिएशन शुरू हो गया। हमने अगर एक बैड थॉट क्रिएट किया, मतलब दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं, गलत भी किया तो हम ही रिस्पॉन्सिबल, अच्छा भी किया तो हम ही रिस्पॉन्सिबल। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम का एक सेकेंड नहीं होता, एक साल होता है। एक साल क्यों है? क्योंकि आपने इतनी सारी आत्माओं को डिस्टर्ब किया। तो आप सोचिए कुछ भी हो जाए आपको कौन से कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आज जो करप्शन चल रहा है, कहीं तो हमारे मन में सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म लोभ है, कपड़ों का हो, खाने पीने का हो, किसी का भी हो, वही रेजोनेंस बाहर जा रहा है और वो लोग करोड़ों अरबों करप्ट कर रहे हैं। ये तो रीजन है, पर जब तक हम नहीं बदलते तब तक दुनिया नहीं बदलती। इस बाबा ने हमें अच्छे से प्यार से पालना क्यों दे? चेंज होने के लिए, क्योंकि हम पूरे रिस्पॉन्सिबल है इस दुनिया को चलाने के लिए। जैसे कि हम व्हील है, व्हील होते हैं ना गाड़ी के, ये सारे विश्व एक गाड़ी है और हम उसके व्हील है। अगर व्हील ही आगे पीछे दौड़ेगा तो गाड़ी कहाँ चली जाएगी? अभी क्या हो रहा है, 108 जो व्हील है, एक व्हील इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो गाड़ी को क्वेश्चन है कि गाड़ी जाए कहाँ, और पब्लिक हिल रही है, आधी इधर जा रही है आधी उधर जा रही है। तो एक अलाइनमेंट में जब सारे व्हील आ जाएंगे तभी गाड़ी अच्छे से चलेगी। और वो भी गाड़ी कब अच्छे से चलेगी? जब ड्राइवर की सीट पर उसको बिठाएंगे। अभी तक किसने भी ड्राइवर की सीट पर उसको नहीं बिठाया है, हर कोई कह रहा है कि मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं विश्व परिवर्तन करके दिखाऊंगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। जब तक हम उसको नहीं बिठाते उसकी सीट पर, हम उसकी सीट को लेना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। अभी भी क्या कहते हैं हम, बाबा हमेशा कहते हैं कि जब से तुम ब्राह्मण बने हो तुम्हारे हर संकल्प का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तुम्हारे हर बोल हर कर्म का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। बाबा ने कहे हुए शब्द हैं, सूरज भाई जी के भी क्लास में आपने सुने होंगे बहुत बार, हर संकल्प का रिस्पॉन्सिबल बाप है। अगर बाबा रिस्पॉन्सिबल है तो हमें गिल्टी फील करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर थोड़ा, हाँ आपको इसका लॉजिक बताते हैं, लॉजिक ही, अगर आपसे गलत संकल्प उठता है, गलत संकल्प उठता है, अगर आपने फील किया आपसे कोई गलत कर्म हो जाता है, किसी की इच्छा नहीं होती गलत कर्म करने की, लेकिन आपसे अगर कोई गलत कर्म हो जाता है और उसी वक्त आपको अगर कॉन्शियसली याद आया जो हुआ सो ड्रामा, बाबा देखेगा तो गलत कर्म आपको अच्छा रिजल्ट देगा, करके देख लीजिए कभी। गलत कर्म से भी सेवा हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता नहीं, हम अपने हिसाब से डिसाइड करते ये गलत है ये सही है, उसका हिसाब अलग है सही और गलत का। तो गलत कौन सा गलत है और सही कौन सा सही वो जानता है। अगर उसी मोमेंट पर आपके मन में थॉट क्रिएट होता है, इसका एक लॉजिक, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हुआ मुझसे, बाबा देखेगा आगे क्या करना है। अब देख लीजिए क्या होता है, कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ सेवा के लिए जाते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका। तो हम बहुत अच्छे स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं सेवा में जाते जाते, रास्ते से कुछ हो जाता है और ऐसे डिस्टर्ब होते कि अंदर में गुस्सा आने लगता है, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन आ जाता है, फिर हमारी स्थिति थोड़ी चेंज हो जाती है। स्थिति चेंज होने के बाद सोचते हैं, उसी स्थिति में हम चले जाते हैं। उस स्थिति में जब हम सेवा में बैठते हैं ना, तो हमसे बहुत स्ट्रांग वर्ड बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। सेवा कराने वाला कौन है?
बाबा।
तो बाबा को पता है कौन सी आत्माओं को स्ट्रांग देना है, कौन सी आत्माओं को सॉफ्ट देना है, इसलिए पहले से आपको प्रिपेयर करते हैं, ये बाबा को पता है। तो कोई भी कर्म गलत नहीं होता, अगर आप सेवा के द्वारा चल रहे, बाबा के कॉन्शियसनेस में चल रहे, तो कोई भी कर्म आपसे गलत नहीं होगा। अगर आपके मन में पक्का निश्चय है कि मेरे हर संकल्प बोल और कर्म का रिस्पॉन्सिबल बाप है, तो देखिए कौन सी कमाल होती है, क्योंकि बाबा को आपको सेट करना है, बहुत सॉफ्ट है और उनको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से बाबा को क्लास कराना है, तो हेवी डोज देना, तो अगर सॉफ्ट ही बात करेंगे तो कोई नहीं उठेगा। तो बाबा ने पहले से आपको प्रिपेयर कर लिया किसी न किसी कारणवश, आपकी इच्छा नहीं होती डिस्टर्ब होने की, लेकिन वो मोमेंट ही बाबा प्रिपेयर कर देते हैं आपको उस चीज के लिए। तो हर बोल से, हर कर्म से, हर संकल्प से सेवा होती है। ऐसे नहीं हमारे जीवन में, अगर आप आज से ही संकल्प करें कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल बाप है, बात खत्म हो गई आपके जीवन, जीवन ही समाप्त हो गई, उसकी हो गई, कुछ बचा ही नहीं, तो स्टॉप लग गया जीवन को, क्योंकि जो होगा बाबा कराएगा। इसलिए देखिए कुछ समय बाद वो स्थिति अपने आप अच्छी बन जाती है सेवा होने के बाद। आप नोटिस कीजिए, गहराई से अभ्यास कीजिए अपने स्वभाव का, नेचर का, कुछ समय बाद अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। जैसे बच्चों को प्यार से कोई बच्चे नहीं समझ रहे, अगर आपने बाबा को कह दिया कि बाबा बच्चे सुन नहीं रहे और आपका स्वभाव बहुत प्यार वाला है, तो ऐसी मोमेंट आपको जब उन्हें समझाना है, तो उससे पहले ऐसे कुछ हो जाता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर बच्चों को आप आपकी एटीट्यूड से समझाते हैं, प्यार से नहीं समझेंगे, तो उसके कारण फिर बच्चे भी शांत हो जाते हैं। ये बाबा का लॉ है, और बाबा का ये जैसे कहेंगे कि एक प्रोसेस है सेवा कराने का, उसी प्रकार से हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल पूरा बाप है, पूरा यानी पूरा, एक भी संकल्प अलग नहीं चल रहा है। बस इस स्थिति में अगर हम चलते चले तोड़ते रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, दुख भी आएगा तो वो दुख नहीं है, सेवा के लिए मिली हुई एक चांस है, स्थिति सेवा के लिए, स्थिति बनाने के लिए मिला हुआ एक चांस है, सेवा के लिए स्थिति बन रही हो और कुछ नहीं है, तो दुख को भी आप एंजॉय करेंगे। दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती इस दुनिया में, जैसे डिजीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, वैसे दुख भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं। हम जितने वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आज, हम जितने वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो गलत वर्ड है, जो दुख देने वाले, उनका कोई अस्तित्व नहीं, बस हमने उनको पकड़ के रखा है कि ये हमें दुख देते हैं। नहीं, आपकी जितनी ऊर्जा है, फिर से उसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि आपकी जितनी ऊर्जा है उसी अनुसार आपको सुख या दुख मिलेगा। सुख या दुख हमारे जीवन में लाने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। शारीरिक बीमारी ऐसे ही नहीं आती। बाबा कभी कभी अपने वरिष्ठ भाई जिन्होंने शरीर छोड़ा, एडवांस पार्टी में चले गए, जो दादिया थी, शरीर छोड़ने के बाद बाबा कहते थे कि बच्चे ने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं उनका पार्ट पूरा होने में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाबा तो बहुत बार ही कहता था, जगदीश भाई जी के लिए भी बाबा बोलते ना, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया शरीर के ऊपर, इसलिए जामानुसार पार्ट पूरा हो गया। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है हर बात के। अगर एक बार हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली खुद ने, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी, बात खत्म हो गई। फिर आपके जीवन में जो ऊर्जा बनेगी आपके लिए, वो सिर्फ बाबा बनाएगा। एक एक खुद ऊर्जा बनाते हैं, दूसरा बाबा बनाता है। जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे दी, तो आपके जीवन में जो हो रहा है उसकी ऊर्जा बाबा के अनुसार बनाएगा, ताकि सेवा हो सके आपसे, आपका संकल्प सिद्ध होगा और बाबा को सहयोग मिलेगा। तो सेवा करने के लिए मानसिक, शारीरिक या धन के रूप में शक्ति होने की आवश्यकता नहीं, बस जो ऊर्जा है वो पर्याप्त है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कैपेसिटी है, तो सेवा अपने आप हो जाती है। करनी नहीं पड़ती, वो करा देता है, खुद आके करता है वो। इस प्रकार से हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे दें। अभी भी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है कैसे सुधारे, सारे सोल्यूशन है हमारे आत्मा के अंदर ही है। अभी जो आत्मा का स्ट्रक्चर बना है, फाइन रिसर्च हुआ है, रिफाइन, उसमें सारी बातें बाहर निकली है कि आत्मा के अंदर क्या है, वहाँ कैसे कैसे कार्य होता है, प्रोसेस कैसे चलती है, ऊर्जा जो हम बाबा से लेते हैं गुरुओं की और शक्तियों की, वो कैसे प्रोसेस होती है और बाहर कैसे मीट होते हैं, उनका दूसरी आत्माओं के साथ क्या कनेक्शन है हमारे आस पास रहने वाले, ये सारा साइंस अभी बाहर निकला है। शुरू में बाबा कहते थे कि आत्मा अंगूठे मिसल है, फिर बाबा ने कहा आत्मा बिंदी है, तो बिंदी नहीं हो सकती, उसमें बहुत कुछ होना चाहिए जरूर। लास्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, रुकुटी में चमकती हुई मस्तक, रंगी बिरंगी मस्तक मणिया, तो मस्तक मणिया किसको कह रहा है बाबा, हम सोच सकते हैं। उसके बाद जैसे कि बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि आपके शक्तियों का राज दरबार, गुणों का राज दरबार, मन से पूछिए कि मन कहा कैसे कार्य करता है, बुद्धि से पूछिए, संस्कारों से पूछिए, ये सारा कार्य मतलब आप उनसे बात कीजिए, रियली उनको कॉन्शियसनेस है। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि आपके पास आपकी सारी शक्तियां हैं, तो सबको ऑर्डर करना नहीं आता, जिस दिन आप ऑर्डर करना सीख जाएंगे सारी शक्तियां आपके लिए हाजिर हो जाएंगी। सच है ये, आप कभी है ना भोजन बना रहे, कुछ ऑफिस का काम कर रहे, जो भी कर रहे, बिजनेस है, भोजन है, सपोज एक घंटे का, 15 मिनट का, आधे घंटे का काम है, जो भी है हाथ से काम करना है, तो आत्मिक स्थिति में आके, सपोज एग्जांपल लेते हैं भोजन बनाना है, तो आत्मिक स्थिति में आके बस आपके दोनों हाथों को ऊर्जा देख के, एनर्जी देख, एक्चुअली एनर्जी है ना, अंदर जाएंगे तो एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, फाइनली ऊर्जा ही है, मटेरियल है ही नहीं है इस जगत में। कहते हैं ना कि 99.999% एनर्जी है और 0.00001 मैटर है, हम तो कहते हैं 100% एनर्जी है, मैटर है ही नहीं, मैटर का कोई अस्तित्व ही नहीं इस जगत में, मैटर बस एक एनर्जी का रूप है, एनर्जी का कन्वर्जन होके वो मैटर का रूप दिख रहा है लेकिन वो मैटर नहीं है। इसलिए आप जिस दिन अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं, देखिए आपके हाथ से काम करना है, कोई सब्जी काटनी, कुछ करना है, तो बस आत्मा समझ के आपके हाथों को ऑर्डर कीजिए कि आपको एक घंटे के लिए ये भोजन बनाना है, आपको ये सेवा करनी है, हाथों को ऑर्डर कीजिए, फिर बस आप देखिए आपके हाथ कैसे काम करते हैं, जस्ट ऑब्जर्व ओनली, आप थकेंगे नहीं, एक घंटे तक आपके हाथ काम करेंगे, जो भी है रोटियां करनी है, जब सब्जी बनानी है, सिर्फ आप आपके हाथों को देखते रहे, आपने उनको ऑर्डर दे दी, सारी एनर्जी यहाँ आ गई, तो हाथों को पता हो गया कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना है, क्योंकि सारा डेटा यहाँ फीड हो गया। ये जो बॉडी है ना, ये बायोलॉजिकल रोबोट है, तो ये बॉडी जो बायोलॉजिकल रोबोट है, इसके कारण क्या होता है कि हाथों को जब आप ऑर्डर करते हैं तो सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सभी सेल्स, तो उनमें सारा डेटा चला जाता है, और डेटा जाने के बाद उनको पता होता है कि मुझे क्या काम करना है, आत्मा से सारा डेटा निकलता है, उसमें जाता है। जैसे आज भी आप देखिए, साइंस ये नहीं बता सकती कि जो शरीर में WBC और RBC है, रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल, RBC WBC का कार्य क्यों नहीं करती और WBC RBC का कार्य क्यों नहीं करती, साइंस के पास इसका आंसर नहीं। साइंस कहती इनको इन्फॉर्मेशन दी किसने कि मुझे यही कार्य करना है, हर एक सेल को इन्फॉर्मेशन आई कहां से तो आई है, इसलिए वो अपना ही काम कर रही, किसी और का काम नहीं कर रही, कार्डियक मसल है वो अपना ही काम कर रहे, न्यूरॉन्स है वो अपना ही काम कर रहे, किडनी अपना ही काम कर रहे, कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का काम नहीं कर रहा है, वह ये क्यों हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दी किसने। इस प्रकार का फूड अंदर स्टमक में जाने के बाद इस प्रकार के जूसेस सीक्रेट होने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से, जरूर अंदर इन्फॉर्मेशन है, एज लाइक दैट आपको बस आपके ऑर्गन ऑर्डर करना है, फिर देखिए कैसे कमा, कोई भी हो, अगर दिमाग की पढ़ाई है, दिमाग का काम है, तो मन और बुद्धि को ऑर्डर कीजिए, फिर देखिए काम।
बाबा कहते हैं कि आप मालिक बनो और कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, कराओ बोलते बाबा हमेशा। अभी तक क्या हो रहा है कि हम कर रहे हैं, जब हम करते तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं तो थकावट महसूस होती है। यहां तक अनुभव, किसी को दौड़ना है तो पांव को ऑर्डर दीजिए और अब बस देखिए कि पांव दौड़ रहे हैं और उसके साथ आप भी चल रहे हैं, आप थकेंगे नहीं, आप नहीं, आप थकते इसलिए पांव थकते हैं, पांव कभी थकेंगे नहीं, उनमें जितनी ताकत है वो दौड़ते ही रहेंगे, क्योंकि आपसे वो ट्रिमेंडस एनर्जी उनके अंदर फ्लो हो रही। तो कोई भी ऑर्गन कभी भी थकता नहीं है, उसके अंदर ताकत है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे कि मेल और फीमेल ऐसी कोई बात नहीं, मतलब माता है भाइयों का काम कर सकती है, भाइये भी माताओं का काम कर सकती है। इसलिए बाबा हर कार्य साकार में किसी को भी दे देते थे। आत्मा है, शरीर अलग है, शरीर थकेगा नहीं अगर आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी कर्म करे, वो भी ऑर्डर देखे मालिक बन के। अभी क्या हो रहा है कि मालिक रहा साइड में, हम ही नौकर बन के काम कर रहे हैं उनके साथ। तो मालिक बनकर अपने सीट पर आकर, योग किससे होता है? बुद्धि से, मन और बुद्धि से योग कर दे। बाबा हमेशा कहता है कि ये बुद्धि योग है, बुद्धि से किया जाता है। तो क्यों ना हम अपनी बुद्धि को ऑर्डर करें और कहें कि योग लगाओ। देखिए, बुद्धि को ऑर्डर कीजिए और कहिए कि योग लगाओ, ऑर्डर देना है उसको, उसको कहना है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, कितने समय के लिए कौन सा चित्र आपको याद रखना है। प्रकृति का नियम ही है, प्रकृति को मतलब जो है वो क्रिस्टल क्लियर में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तब वो रिजल्ट देती है। अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी तो रिजल्ट आगे पीछे हो जाएगा। मन तो संकल्प उठाता है, लेकिन जब तक बुद्धि उसका चित्र निर्माण नहीं करती तब तक वाइब्रेशंस उत्पन्न नहीं होते। जैसे मन ने संकल्प किया एप्पल, लेकिन बुद्धि ने चित्र दिखाया एक इमली, तीखा और नमकीन लगा के आपके मुंह में डाली जा रही, तो पानी तो इमली का आएगा मुंह में, एप्पल का तो पता नहीं। तो यहां मन क्या संकल्प कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपकी बुद्धि कौन सा चित्र देख रही अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चल के, अभी तक हमने सुना है हाउ टू ट्रेन आवर माइंड, एक सब्जेक्ट साइड में रखेंगे, हाउ टू ट्रेन आवर इंटेलेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिसने बुद्धि को ट्रेन किया वो जीवन का मास्टर बन गया। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, मन की लाइन नहीं, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर होना मतलब जितने समय मन वही स्थित हो सकता है जहां बुद्धि स्थित होती है। मन अगर आपकी बुद्धि आपको अमेरिका दिखा रही है और आप कहेंगे मैं इंडिया में स्थिर हो जाऊंगी, इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि बुद्धि जो चित्र दिखाएगी मन उसको उसके पीछे जाएगा, मन उसके ही संकल्प निर्माण करेगा। अभी बुद्धि ने चित्र दिखाया ताजमहल का, तो मन उसका वर्णन करना शुरू करेगा, मन को कुछ पता नहीं है, मन को जो चित्र सामने आएगा उसके थॉट चलाना शुरू करता है। तो हमें अपनी बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसली बार बार पॉजिटिव चित्रों को याद करना पड़ेगा, जैसे कि परम धाम है, बाबा है, कॉन्शियसली कॉन्शियस होना चाहिए, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, मैं परम धाम को याद कर रही हूँ, मैं सूक्ष्मतन को याद कर रही हूँ, मैं मेरे स्वरूप को याद कर रही हूँ, पास स्वरूप। तो ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंटेलेक्ट ट्रेन होगी, फिर आप जहां चाहेंगे वहां उसको लगा सकते हैं। एक बार इंटेलेक्ट को आपने लगा दिया फिर मन तो उसके पीछे ही जा रहा है, मन तो मन चित्रों के बिना कभी संकल्प नहीं उठा। जहां भी आप बैठे हैं जैसे ही देखते जाएंगे चित्र, जब तक बुद्धि में नहीं जाता तब तक मन संकल्प नहीं उठाता, ये भी सच है। भले इस रूम में बैठे हैं लेकिन सामने क्या है आंखों से देख रहे हो, लेकिन बुद्धि में नहीं जा रहा तो मन संकल्प नहीं कर सकता। बुद्धि में जो चल रहा है उसी के संकल्प मन करता है। इसलिए अभी के समय अनुसार हमारी बुद्धि को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। जितना बुद्धि को ट्रेन करेंगे उतने हम योग में शक्तिशाली बनेंगे। तो कॉन्शियसली अपने आप को आत्मा देखना, यानी अपना स्वरूप आप आपकी बुद्धि से अपने आप को दिखा रहे हैं कॉन्शियसली, तो मन क्या करेगा, आत्मा के संकल्प उठाना शुरू करेगा, फिर बोलेगा आत्मा कैसी है, ज्योति बिंदु स्वरूप स्टार है, फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र हूँ, मन अपने आप संकल्प उठाएगा। अभी हम उल्टी प्रोसेस कर रहे थे, मन को संकल्प दे रहे थे, बुद्धि में कुछ भी ला रहे थे, ये नहीं हो सकता, मन पॉसिबल ही नहीं है। मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट क्या करने जा रहे हैं, कि बहुत गाड़ी तेज चल रही है, हम क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इंजन बंद करना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं होगा, पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा टायर को, तब जाके गाड़ी स्लो होगी, और स्लो होने के बाद फिर इंजन बंद कर सकते हैं, फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मन है इंजन और टायर्स है बुद्धि गाड़ी के, और हमें ड्राइवर। तो गाड़ी कहाँ मोड़नी है, टायर के ऊपर है, इंजन पर चलता ही रहेगा, इंजन का कितना स्पीड है चलता ही रहेगा। तो इसलिए अभी हमें इंटेलेक्ट को ट्रेन करना है। इंटेलेक्ट को ट्रेन करने के लिए समय निकाल के बार बार बुद्धि से चित्र कितने देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बुद्धि में क्या चित्र ला रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विचार सागर मंथन और कुछ नहीं, बुद्धि में एक चित्र लाना और उसके ऊपर थॉट शुरू करना, वो भी विचार सागर मंथन, उससे बहुत गहराई के पॉइंट निकलते। और बुद्धि की लाइन क्लियर होना, यानी आपने जिस चित्र को याद करना चाहा उसे क्रिस्टल क्लियर देखना, फिर बुद्धि की लाइन क्लियर होना। आज भी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है बाहर, वो लोग यही कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से उस चीज को विजुलाइज करना सीखो, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर विजुलाइज करो जो चीज आप चाहते हैं। विजुलाइज करने के बाद थॉट चलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यूनिवर्स में चली जाती है, आपको रिस्पॉन्ड मिलता है, सेम होता है। तो आज से हम इंटेलेक्ट को ट्रेन करना सीखेंगे, कॉन्शियसली समय निकाल के अपने आप को आत्मा देखिए, आत्मा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बिंदी हूँ, बार बार अपने को देखने का प्रयास कीजिए। अभी तक इस शरीर को देख रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए कि नाम ही भूल जाए कि मेरा नाम क्या है, भूलना चाहिए नाम, एक समय ऐसा आना चाहिए, फिर देखिए आपके पास क्या शक्तियां हैं। अभी भी अगर हमारा नाम किसी ने पुकारा तो बहुत झट से पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है बॉडी में बैठा हुआ कि ये मेरा नाम है। अगर आप आराम से देखते हैं किसने, मतलब आप उस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, इतना ही हो जाता है, भले उसको देर लगेगी रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में वो सडन रिस्पॉन्ड करता है शरीर से रिलेटेड कोई भी बात आती है। इसलिए देखिए जो रॉयल्टी में होता है, बाबा कहते हैं ना देवी देवता है कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस बहुत अलग चीज है। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद अपने आप सारी बातें बदल जाती है, चेंज नहीं करना पड़ता। अब देखिए अभी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में नहीं, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक होता है योग करना और एक होता है योग होना। तो योग अपने आप हो जाता है सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद, अब ट्राई करके देख लीजिए, तो लगाना नहीं पड़ेगा। और एक बात रही डिस्कस करने के लिए, सोल कॉन्शियसनेस की ताकत इतनी है, अब ट्राई करके देखिए, अभी तक के स्टडी के अनुसार जो आत्मा अपने आप को सिर्फ 17 सेकंड के लिए आत्मा रियलाइज कर पाएगा, 17 सेकंड, उसके पास 20 घंटे की ताकत होगी, 20 घंटे स्थिति अपने आप बनी रहेगी। अब ट्राई करके देख लीजिए, 17 सेकंड के लिए अपने आप को आत्मा रियलाइज करने का प्रयास कीजिए कि मैं ये हूँ, सिर्फ 17 सेकंड। अभी बहुतों को लगेगा कि हम तो घंटों तक तो कर, 17 सेकंड तो मामूली बात है, 17 सेकंड क्या बड़ी बात है, 17 सेकंड में 1700 मिली सेकंड, 1700 मिली सेकंड में एक भी मिली सेकंड के लिए अदर थॉट नहीं आना चाहिए। एनर्जी क्या होता है कि आप जहां फोकस करते हैं वहां एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है, आपसे भी और यूनिवर्स से भी। तो जहां फोकस कर रहे बार बार एनर्जी वहां ही जा रही, जैसे अदर थॉट है मतलब आपका फोकस इधर चला गया, तो यहां से एनर्जी कम हो गई। जितने देर के लिए एक ही जगह पर एनर्जी फोकस रहेगी वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, घंटों में मल्टीप्लाई होती जाएगी 17 सेकंड। अगर कोई 68 सेकंड के लिए ये बात करता है ना, 17 के 4 है मल्टीप्लाई, 17, 34, 51 और 68, 68 सेकंड के लिए कोई भी करता है तो 20,000 घंटे की एनर्जी आपके पास है 68 सेकंड। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अब ट्राई करके देख लीजिए। अभी तक के अनुभव के अनुसार एक बहुत अच्छी योगी आत्मा, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, वो कहते 13 से ऊपर नहीं जाना है, मैक्सिमम 13, और 13 के बाद उनका ये कहना है कि एनर्जी सहन नहीं हो रही, जाएगा लेकिन ब्रेन को एनर्जी सहन नहीं हो रही, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे इमिट होना शुरू होता है। कल भी बहुत से भाई अनुभव सुना रहे थे जीपीओ में
कि आत्मा कुछ सेकंड के लिए भी समझने का प्रयास किया तो भी सिर भारी हो जाता है, क्योंकि उस एनर्जी को सस्टेन करने की ताकत इन न्यूरॉन में नहीं है। उस सेकंड को बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड, दो सेकंड, पांच सेकंड, दस सेकंड, ऐसे करके आगे जाना पड़ेगा, फिर रियलिटी प्राप्त होगी हमें कि आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा की पावर क्या है। बुद्ध को कोई गुरु नहीं था, फिर भी आत्मा साक्षात्कार हुआ। हमारा तो स्वयं परमात्मा गुरु है, उसने सारा ज्ञान भी दिया हुआ है कि आत्मा कहाँ है, कैसी है, फिर भी अभी तक आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस डिविनिटी में नहीं आ रहे। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। आज भी अगर कोई सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है तुरंत परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये जो ज्ञान है, पहले ही कहा आपसे कि अदर जो संस्थाएं है स्पिरिचुअल, उनके जैसा नहीं है ज्ञान। आप अगर प्रैक्टिकल रूप से करते जाएंगे तो सच में जो भी 700-750 करोड़ आत्मा है उनमें आप चमकेंगे, कोहिनूर पूरे चमकेंगे अगर प्रैक्टिकल रूप में करते जाएंगे। आपके पास एक अलग ही दिव्यता होगी, जहां भी जाएंगे परिवर्तन होता जाएगा, आपके वाइब्रेशन से परिवर्तन होता जाएगा। आने वाली कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, रुक जाएगी, आपके वाह होने से ही वो रुक जाएगी, होगी नहीं। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जब विनाश होना होता है किसी जगह, तो बाबा वहां के कुछ बच्चों को उठा लेता और दूसरी जगह लेके जाता है, क्योंकि वो जहां जब तक वहां है वहां कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उनको वहां से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है बाबा, तब वहां जाके वो विनाश होता है, क्योंकि प्रकृति को, प्रकृति की हिम्मत ही नहीं होती वहां डिस्ट्रक्शन करने की, उनकी एनर्जी के अनुसार। तो बाबा ऐसे समय पर उनको उठा के लेके जाता है, फिर कहते अरे हम वहां से यहाँ आ गए और वहां ये हो गया। इसका रीजन ही ये है, क्योंकि आपकी जब तक एनर्जी वहां वर्क कर रहे, प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, ये भी नियम बना। तो इस प्रकार अंदर की आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना बहुत जरूरी। यहाँ से 3 इंच अंदर, यहाँ से 2.5 इंच अंदर जब शरीर ब्रेन में चले जाते तो बीच में एक पोर्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, उसके बीच में छोटी सी स्पेस है, वहां आत्मा रहती है, वही से सारा कार्य करते, इस शरीर को चलाते, मुख से जो शब्द निकलते हैं उसका सारा कॉग्निशन प्रोसेस अंदर होता है। जैसे कभी हिलर्स कहते हैं कि आपके 7 चक्र हैं, 7 चक्र में अलग अलग लेटर्स हैं, जब आपको एक शब्द उच्चारने का होता है तो सारे चक्रास कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन होती है और वो सारा वर्ड कंबाइन होकर आपके मुख से बाहर निकलता है, बहुत फास्ट होता है। एक्चुअली वो यहाँ होता है आत्मा के अंदर, क्योंकि चक्रास की एनर्जी भी उसी के अंदर है, तो सारा खेल यहाँ से चलता है। आप देखेंगे आत्मा क्या करते हैं, मन से संकल्प उठा के, लेकिन जब तक चित्र निर्माण नहीं होता तब तक वाइब्रेशंस नहीं निकलते। मन से जब संकल्प चलता है और जब चित्र निर्माण होता है तो वाइब्रेशंस निकलते हैं। वाइब्रेशंस निकलने के बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में वाइब्रेशन चले जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमारी बॉडी में बहते हैं और पिट्यूटरी से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हमारी बॉडी में बहते हैं और इससे शरीर बना रहता है। तो बीमारियां कहां से निकल रही, आत्मा से। जो थॉट क्रिएट करेंगे वही हार्मोन्स बॉडी में सिक्रेट होंगे और उसी के कारण हमारा शरीर बनेगा। प्लेसिबो इफेक्ट तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कैंसर हुआ था, दवाई एक्चुअली वो दवाई नहीं थी, बस पेशेंट को बताया ये 50,000 की एक गोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाते हैं तो 1 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। उसका कॉन्शियसनेस बना, हाँ ये गोली मुझे ठीक कर देगी, 50,000 की इतनी कॉस्टली, मेरा मतलब मेरे ऊपर 15 लाख खर्चा हो रहा है 1 महीने का इस गोलियों का। उसने खा ली, 1 महीने में कैंसर ठीक हो गया। कैंसर किसने ठीक किया? कॉन्शियसनेस, गोली ने नहीं किया। अभी तक देखा गया है कि अभी ये मान्यता भी आ चुकी है, 99% जो डिजीज है साइकोसोमेटिक है, मन से उत्पन्न होते हैं। हम तो कहते हैं कि 100% डिजीज साइकोसोमेटिक है, डिजीज शरीर से कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, सभी साइकोसोमेटिक है, मन से ही निकलते हैं, मन और वाइब्रेशंस। जो चीज मन से निकलती है उसका इलाज प्रकृति कैसे कर सकते हैं, जो चीज एनर्जी से उत्पन्न हुई है उसका इलाज प्रकृति कैसे कर सकते हैं, मैटर कैसे कर सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रकृति से अगर कोई चीज उत्पन्न हुई है तो उसको प्रकृति ठीक करेगी, लेकिन जो एनर्जी से निकले उसको एनर्जी ठीक करेगी, प्रकृति ठीक नहीं कर सकती, करेगी लेकिन टेम्पररी करेगी। इसलिए मन से कुछ भी हम कर सकते हैं, इतनी ताकत। अब एक एक्सपेरिमेंट सुना, जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ उसमें एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई थी, आपने सुना होगा शायद, फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना, उसको एक कुर्सी से बांध दिया गया, हाथ पाव सारा कुछ ऐसे बांधा कि कुछ ऐसे भी हिल ना पाए, इतना बांध के रखा, सिर को ढक दिया और उसके कान में कहा कि अब एक कोबरा आएगा और आपको काटेगा और आप मर जाओगे। थोड़े समय में कोबरा आने की आवाज निकाल दी। कोबरा नहीं था वहां, एक साइंटिस्ट आया, उसने एक पिन ली, उसको दो नुक थे, वो पिन उसके पाव पर मार दिया। उसको कॉन्शियस क्या था, कोबरा काटने वाला। थोड़े समय में वो मर गया, शरीर छोड़ गया। पोस्टमार्टम किया तो पता चला जो कोबरा का जहर था उसके बॉडी में नहीं, कोबरा ने काटा नहीं लेकिन शरीर ने जहर को क्रिएट किया, उस जहर से वो मर गया। हमारे शरीर में मन के द्वारा कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे कहते हैं हार्मोनल सिक्रेशन। कौन से भी प्रकार के केमिकल्स हमारे शरीर में सिक्रेट हो सकते हैं, इतनी ताकत है मन के अंदर, ताकत है। तो बस हमें अपने मन को ड्राइव करना है सही तरीके से। इसलिए जो चीज एनर्जी से उत्पन्न हुई उसे एनर्जी से ही समाप्त किया जा सकता है, एनर्जी से ही रिप्लेस किया जा सकता है। जिस चीज का अभाव जीवन में है, मतलब एनर्जी की कमी है, कहीं तो एनर्जी की कमी है, उस एनर्जी को बढ़ाने के बाद अभाव निकल जाएगा। अभी भी हम कहते हैं कि शरीर ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं है, ये पहली एनर्जी हमने जो शरीर को दी हुई है कि हमारा शरीर ठीक है। शरीर ठीक है, शरीर कभी खराब नहीं होता। शरीर अपने आप कैसे खराब होगा, आप ही सोचिए, मैटर कैसे खराब होगा। जब तक उसको किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती तो खराब नहीं हो सकता मैटर किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैटर में खराब होने की ताकत ही नहीं है, उसको अपने आप को चेंज करने की ताकत ही नहीं मैटर में, सिर्फ एनर्जी चेंज करती है मैटर को। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा, डॉक्टर मसारो इमोटो जापान के साइंटिस्ट, पानी के ऊपर किया होगा, एक के ऊपर हेट लिखा, एक के ऊपर लव लिखा, तो दोनों के क्रिस्टल चेंज हुए, एक के ऊपर हिटलर लिखा, एक के ऊपर दूसरा कुछ किसी संत महात्मा का नाम लिखा, तो सारा कुछ चेंज हो गया। मतलब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, कॉन्शियसनेस से जो ऊर्जा निकलती है, वो सारा हमारा जीवन तय कर दे कि हम किस रास्ते से जाएंगे। अगर आपका सच्चा इंटेंशन है अंदर से बहुत अच्छा बनने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बाबा भी नहीं रोक सकता, बाबा में भी ताकत नहीं किसी को रोकने की, ये सच है। अगर आपका पक्का निश्चय है तो बाबा भी आपको नहीं रोक सकता, करके देख लीजिएगा, क्योंकि बाबा क्यों रोकेगा अगर आपका अच्छा निश्चय है, नहीं रोक सकता, क्योंकि निश्चय की एनर्जी है। हम कहते हैं किसी ने मन्नत मांगी ईश्वर से, मेरे को बच्चा नहीं, उसका भी एक साइंस है। बाबा बच्चा, बाबा कहते हैं ना मैं बच्चा देता हूं, बाबा इतनी छोटी सी बात करने के लिए नीचे आएगा बच्चा देने के लिए, आप ही सोचिए, किसी को पैसा देने के लिए ऊपर से नीचे आएगा। तो मैकेनिज्म है सारा, उसने वो उसका मैकेनिज्म बनाया है, ऑटो में डाल चुका है वो सारा कुछ। अब जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी में क्रिएट कर रहे हैं, उससे पहले एक एग्जांपल आपको बताते हैं। कोई एक घंटा भक्ति कर रहा है, कोई एक मिनट भक्ति कर रहा है, दोनों का फल सेम होता है, उसका रीजन बता दें। जिसने एक मिनट के लिए भक्ति की, उसका जो भाव था, इंटेंशन था, इतना शुद्ध था कि एक मिनट में भक्ति पूरी हो गई। और जिसने एक घंटा की, उसको 59 मिनट भाव क्रिएट करने के लिए गए, 59 मिनट भाव क्रिएट करने के लिए गए। जब भाव क्रिएट हुआ तो एक मिनट में भक्ति समाप्त हो गई। भक्ति सेकंड की होती है, और मतलब भक्ति करने जब जाते हैं, जब दिल से मन से भक्ति होती है तो ज्यादा देर नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी हो जाती है, तुरंत सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक मिनट में हो जाते हैं। लेकिन वो जो भाव है वो क्रिएट करने में मेहनत लगती है। सेम कंडीशन है, योग सेकंड का है, लेकिन योग की जो पढ़ाई है वो क्रिएट करने में बहुत समय जा रहा है। अगर वो ही नहीं करेंगे तो योग भी नहीं हो पाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे मन्नत की, तो कोई मन्नत मांगता है कि मुझे ये प्राप्त हो, उसका रीजन ये है, आपने जो संकल्प किया, आपकी जितनी शक्ति है, अगर आप बहुत खुश है और खुशी में वो संकल्प किया कि मुझे ये चीज प्राप्त हो गए, तो जो रेजोनेंस आएगा बहुत ऊंचा जाएगा, एनर्जी जो निकलेगी बहुत हाई निकलेगी। और अगर आप दुखी हैं, मतलब उस मन्नत को कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उतनी ही चाहिए जितनी उसको आवश्यक है। तो आप अगर खुश हैं, खुशी में रहकर मन्नत मांगते हैं, तो एनर्जी हाई जाती रहेगी और वो भरती रहेगी। और कोई दुखी है, दुखी रहकर वही मन्नत मांग रहा है, तो एनर्जी बहुत थोड़ी थोड़ी जाती रहेगी। उसको चाहिए 1000 यूनिट की एनर्जी। तो आप जब खुश होते हैं तो एक संकल्प में अगर 100 की एनर्जी निकलती है एक संकल्प में, तो आपने 10 बार थॉट क्रिएट किया आपकी मन्नत पूरी होगी। और जो दुखी है उसकी एक संकल्पों में एक यूनिट की एनर्जी निकलती है, उसको हजार बार थॉट क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके वो हजार की बनेगी और फिर उसकी मन्नत पूरी हो। इक्वेशन सेम है एनर्जी का, लेकिन यहां से कैसे दे रहे उस अनुसार आपके थॉट कंप्लीट हो। तो इसलिए सारे कार्य ऑटो में चलते हैं, ऑटो प्रोसेस में चलते हैं। भगवान ने अपना ड्रामा ही ऑटो में डाल के रखा है सारा, इसलिए कहते हैं ना कोई ड्रामा से छूट नहीं सकता, सभी बंधे हुए, सब ड्रामा ऑटो में चल रहा है। वो मतलब जैसे कठपुतलियों का खेल है, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, वहां से वहां जाएगा, हमें लग रहा है ये कैसे चल रहा है। सपोज इस रूम में 20 लोगों को रखा और हर एक आत्मा को कहा कि आपको ये जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ आना है नेक्स्ट मिनट में, यहाँ से यहाँ जाना है नेक्स्ट मिनट में, यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे हमने 5 मिनट का खेल बनाया। एक को बताया कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, 5 स्टेशन है, ऐसे 20 लोगों को बताया। तो जब देखने वाले होते वो सोचते रहे कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं टकरा रहे हैं, ऑलरेडी उनके अंदर वो डेटा आपने भर के रखा है किसको कहाँ जाना है, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा उनका, वो टकराएंगे नहीं एक दूसरे से। इसी प्रकार हर आत्मा में वो डेटा भरा हुआ है कि किसको कहाँ से कहाँ जाना है, किसको क्या करना है। तो जिस दिन हम स्वयं को अच्छे से पहचान लेते, आत्मिक स्थिति पहली कड़ी है राजयोग की। आत्मिक स्थिति के बिना राजयोग नहीं हो सकता। हम कितने साल से चल रहे हैं डजंट मैटर, ज्ञान को किस तरीके से उठाया ऑलवेज मैटर। इसलिए कभी कभी कहते हैं एनर्जी मैटर डजंट मैटर, एनर्जी ऑलवेज मैटर, सारा खेल एनर्जी का है, मैटर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए अपनी एनर्जी में मैं जो हूँ उस स्थिति में आना पड़ेगा। हम हमारी आइडेंटिटी फॉल्स क्रिएट कर रहे कि मैं शरीर हूँ। जब तक हमारी आइडेंटिटी फेक है तब तक हम भी फेक हैं। सिंपल एक बताते आपको स्लोगन छोटा सा, जब तक हम लेबल नहीं उतारते तब तक हमारी गिनती टेबल में है। जब लेबल उतर जाएंगे तब टेबल को एक डिजाइन मिलेगी और टेबल का डायमंड बन जाएगा। हीरा एक पत्थर ही होता है, उसको डिजाइन करने के बाद वो डायमंड का रूप ले लेता है। तो जब तक हम लेबल में है इस शरीर के पोस्ट पोजीशन के, तब तक हम सभी टेबल है, टेबल यानी पत्थर है। तो लेबल उतारना पड़ेगा तब जाके सच्चा डायमंड बनेंगे और फिर अपनी सच्चाई की अनुभूति होगी। अभी तक हम सत्य स्थिति को अनुभव नहीं कर पाए आत्मिक स्थिति की। जिस दिन आत्मिक स्थिति की सत्य स्थिति को अनुभूति कर पाएंगे, सच में ज्ञान इतना मीठा लगेगा, खुद की स्थिति बाबा से योग लगाना इतना मीठा लगेगा कि हम नीचे नहीं आ पाएंगे। नीचे लाना पड़ेगा किसी को हमें संसार में, नहीं तो ऊपर जाएंगे। और आत्मिक स्थिति ऐसी स्थिति है, आप करके देख लीजिए अगर अव्यक्त तो होना है तो जल्दी अव्यक्त तो होने की संकल्प आप रखते हैं तो करके देख लीजिए। 3 मास कोई भी आत्मा लगातार आत्मिक स्थिति की गहरी प्रैक्टिस कर, शरीर छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि पहले ही आपको बताया कि कुछ सेकेंड की एनर्जी शरीर को सस्टेन नहीं होती। शरीर कब छूटता है, जब एनर्जी सस्टेन नहीं होती शरीर में, क्योंकि आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए, ये शरीर उसके लायक नहीं रहा। तो उस मोमेंट में वो शरीर छूट जाता है। एक्सीडेंट हुआ तो भी शरीर बंद हो गया ना, तो भी शरीर छोड़ देती, और हाई एनर्जी होने के बाद भी शरीर छोड़ देती, क्योंकि वो शरीर उसके लायक नहीं रहा। तो एनर्जी बढ़ाने के बाद आप अनुभूति में चले जाएंगे। चलो अव्यक्त तो नहीं होना है इतना जल्दी, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। अव्यक्त होंगे तब तो होंगे। अभी बहुत से कहते हैं अभी अभी तक कृष्ण को देखना है, फिर कृष्ण आएगा, राधा आएगी, उनको देखना है। राजधानी की शुरुआत तो देखें, बाद में जाएंगे। लेकिन वो सब मिलेगा, जरूर मिलेगा, उसके लिए पहले अपनी स्थिति में आना पड़ेगा। राजधानी की शुरुआत छोड़िए, कृष्ण को आप हाथ में उठा पाएंगे अगर आपकी एनर्जी उसको उठाने के लायक है। सारा एनर्जी का खेल। अभी बहुत से आत्माएं कहते कि हम कृष्ण को उठाएं, अगर आपके पास उसको उठाने उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी अगर मैच नहीं, उसको उठाना छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पता भी नहीं चलेगा कि कहां कृष्ण जन्मा है। अगर वो पर्याप्त एनर्जी नहीं है उसकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो। इसलिए हमें अंदर से आत्मिक स्थिति में आने की गहराई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। अभी एक पुरुषार्थ चल रहा है, 1 घंटे में 108 बार रिपीट हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप को रिपीट कर रहे हैं। या फिर सारे दिन में, चलो घंटे में रिपीट नहीं हो रहा तो सारे दिन में 1008 बार रिपीट करना है। 1008 बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं। अगर याद नहीं दिलाते तो हम खुद से ठगी कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और शरीर के भान में अभी वायुमंडल ऐसे तमो प्रधान बनता जा रहा है कि शरीर का भान अभी और बढ़ता जाएगा, क्योंकि शारीरिक बीमारियां आनी है, तो सारा ध्यान उसके ऊपर लगा रहेगा, शरीर के ऊपर, तो कॉन्शियसनेस निकलेगा नहीं। अब में से जो मेडिकल सेक्टर में उनको पता है कि पेशेंट अगर बहुत बीमार है, इंजरी बड़ी है, तो उसको एनेस्थीसिया देकर सुलाते हैं, दवाइयों का काम जल्दी हो सके इसलिए। सुलाते क्यों है, सोने के बाद होता क्या है, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है और शरीर अपना मेंटेनेंस अपने आप करता है, दवाइयां काम नहीं करती। पहले ही हमें जाना है दवाइयां जस्ट एक रीजन है, शरीर अपना काम खुद करता है। और जब हॉस्पिटल में एडमिट करते थे कॉन्शियस होता है कि मैं एडमिट हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, घर में एडमिट होने को कहेंगे तो नहीं होगा, इधर उधर देखता रहेगा, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या, मतलब मन भागता रहेगा। हॉस्पिटल के माहौल में कॉन्शियसनेस ही हो जाता है कि मैं पेशेंट हूँ, वहां जाने से ही कॉन्शियसनेस आता है कि मैं पेशेंट हूँ और मुझे एडमिट होना है, मेरा शरीर ठीक होना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, कॉन्शियसनेस लेके आते हैं, वही एनर्जी वहां काम करना शुरू करते हैं। अगर हम मधुबन जाते वक्त कॉन्शियसली जाए, कोई भी आत्मा अगर मधुबन जाते वक्त कॉन्शियसली मधुबन में जाए कि इस तन में मैं संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए यहाँ आई हूँ, देखिए क्या होता है। अब जस्ट एक संकल्प करके जाए मधुबन, इस तन में मैं आत्मा यहाँ संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए आई हूँ कॉन्शियसली, फिर अटेंशन रखिए उस संकल्प के ऊपर, फिर जब तक आप मधुबन में है तब तक आपकी स्थिति क्या बनी रहेगी आप चेक कीजिए, मधुबन में एंट्री करने से पहले, और शायद से मधुबन से निकल भी नहीं पाएंगे, जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनने अगर कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग है, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, तो मधुबन में भी आप व्यक्त हो सकते हैं। आपने संकल्प ही किया ना संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए आई हूं, तो ये भी होने के चांसेस है कि वहां ही शरीर छोड़ दे संपन्न बनने के बाद। लेकिन चलो शरीर तो नहीं छोड़ा, लेकिन बाहर आएंगे तो पहले जिसने एंट्री की थी वो कॉन्शियसनेस और बाहर निकलने वाला जो उसकी कॉन्शियसनेस डिफरेंशिएट कीजिए। आपको फील होगा कि एंट्री करने वाला कोई और था और बाहर निकलने वाला कोई और है। जिस कॉन्शियसनेस से जिस जगह हम जाते हैं वही एनर्जी वहां एक्ट करना शुरू करते। पहली बार छोड़ दीजिए। जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं तो जो पहला संकल्प आपका उनके प्रति होता है वही आपका कन्वर्सेशन होता है, वही आपके कन्वर्सेशन का रिजल्ट होता है। पहला थॉट आपने उनके लिए जो पहला थॉट क्रिएट किया वही आपकी एनर्जी एक्सचेंज करेगा। अब बाद में उनसे अगर आपने पहला ही थॉट क्रिएट किया ये ऐसी आत्मा है, बाद में आप उतने उनसे कितने प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने आपका कॉन्शियसनेस ही क्रिएट कर दिया कि ये आत्मा ऐसी है, फिनिश हो गया वाकई। और कोई आत्मा कैसी भी है, वह आपने गुड थॉट क्रिएट किया, बहुत अच्छी आत्मा है कॉन्शियसली, वो कैसी भी होने दीजिए, आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो फ्रूटफुल रिजल्ट होगा और एक जो वाइब्रेशन होंगे वो अलग ही होंगे। फिर लोग पूछेंगे अरे आप इनके साथ बात करते हैं, इनके साथ रह पाते हैं, क्योंकि आपका थॉट उनके प्रति जो है वो लोगों को पता नहीं, और आपके और उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो लोगों को पता नहीं, वो सिर्फ आपको और उनको पता है। तो इसी के कारण हम जिस चीज को देखकर जो पहला थॉट क्रिएट करते हैं वही हमारा अंतिम रिजल्ट होता है। अंतमति सो गति, ये बहुतों ने सुना है, अंतमति सो गति, ये स्टार्ट है ना, अंतमति सो गति जो मिली, गति मिलना माना नहीं स्टार्ट होना, तो स्टार्ट होने से पहले आपने जो थॉट क्रिएट किया है वो है आपकी अंतमति। तो आपका जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो आपने क्रिएट किया है वो है आपकी अंतमति, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जो गति क्या मिलेगी, जो आपने अंतमति रखकर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट किया वही आपकी गति होगी। किस घर में प्रवेश करते समय आपके मन में जो थॉट क्रिएट है वही ऊर्जा आपसे उस घर में फैलेगी। हर खेल में यही चलता है, भोजन में एक निवाला उठाते समय पहला निवाला जो थॉट क्रिएट होता है भोजन को देखते समय वही ऊर्जा उस भोजन से आपको मिलेगी। हर चीज से वही ऊर्जा मिलेगी जो थॉट आप उसके लिए क्रिएट करें। तो हमें आत्मिक स्थिति में आना है, कुछ भी हो जाए गहराई का अभ्यास करना है। 17 सेकंड ही आपके लिए बोले हैं, तो 17 सेकंड तो बड़े हैं, फिर भी प्रैक्टिस करते तो जा सकते हैं। हम कहते हैं कि हम योगी आत्मा है, तो योगी की धारणाएं हमें दिखनी चाहिए। योगी 17 सेकंड के लिए योग नहीं लगाता, योगी का योग तो कम से कम 12 साल के लिए होता है। हम सुनते हैं ना तपस्या 12 साल की होती है, 12 साल जाने दीजिए, 12 दिन तो कर सकते हैं हम, कम से कम 12 दिन। 12 दिन भी अगर कोई आत्मा बहुत अच्छे से अभ्यास करे आत्मिक स्थिति का, तो भी आत्मिक स्थिति क्या है उसको पता पड़ेगा, सच्ची गहराई में उतर पाए। प्रॉब्लम कुछ नहीं हमारे बाहर, सच बोलते हैं हमारे आसपास प्रॉब्लम जीरो है, बस जो ऊर्जा है वो हमें रिस्पॉन्ड कर दे। प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारे जीवन में। आज बहुत आत्माएं कहती है ये है वो है, नहीं कुछ नहीं है। हम कहते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपकी जो ऊर्जा है उस अनुसार आपको मिलता जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए ऊर्जा को बढ़ाइए योग करके, बाबा से आत्मिक स्थिति से भी अपने आप ऊर्जा बढ़ती है। योग आप सोचिए 17 सेकंड के लिए अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते, तो 17 सेकंड में अगर उससे लेना है तो क्या वो सस्टेन होगी? आप सोचिए उसकी कितनी शक्ति, खुद की ताकत अगर इतनी है प्योर स्वरूप की, तो उससे जो लेंगे तो वो कितनी शक्तिशाली होगी। कल अपनी बड़ी दीदी क्या नाम उनका जीपीओ की, उर्मिला बहन जी, वो सुना रहे थे कि क्लास होने के बाद, भाई जी आपने 17 सेकंड तो बहुत बड़ी बात की, उससे 1 सेकंड 3 सेकंड लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सस्टेन नहीं हो पाते, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने खुद का अनुभव सुनाया। तो मतलब योग ऐसी विधि है जिस विधि से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ आत्माओं के अभी कॉल्स है, उन्होंने कहा एक आत्मा का अनुभव बॉम्बे में है, बॉम्बे में उन्होंने अमृत वेले उठकर 10 या 15 मिनट के लिए कुछ सिर्फ आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, शरीर की सारी प्रक्रियाएं बदल गई, उनको वोमिटिंग वगैरह होने लगा, क्योंकि अंदर का जो कचरा है किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है, बीमारी के रूप में कहो किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है। तो मतलब आत्मिक स्थिति में आने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होती है, पॉजिटिव एनर्जी, उसके कारण नेगेटिव एनर्जी कहाँ है? बाबा कहते हैं कि आपकी कर्मेंद्रिय आपके वश में, मतलब हर एक सेल में वो नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। आपको तो पता है अच्छे से कि सेल की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से सारी ऊर्जा पावर हाउस है सारे सेल को मिलती है, सेल से सारा शरीर चलता है। तो आप देखिए अगर सेल में ही निगेटिव ऊर्जा है वहां भरी हुई, तो सेल निगेटिव ही एक्ट करने वाली है, तो हमारे ऑर्गन्स निगेटिव एक्ट करने वाले हैं। जब पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो वो सेल में सस्टेन नहीं होती, इसलिए सेल्स बॉडी कुछ रिएक्शंस दिखाती है, लेकिन वो करना बहुत आवश्यक है। जब करेंगे तभी तो वहां की नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। कोई भी आत्मा अगर 4 मास के लिए, 4 मास के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, 3 मास तो है ही, लेकिन 4 मास में क्या होता है, शारीरिक की सारी बीमारियां खत्म हो जाए। आपको तो पता है ना 4 मास में सेल चेंज हो जाते हैं आरबीसी शरीर के, 4 मास में चेंज होते, तो आपके सेल ही अगर सारे चेंज हो गए तो सारा खून ही बदल गया, खून बदल गया। कहते हैं ना ये संस्कार इनके खून में है, खून में कैसे आ गए, क्योंकि एनर्जी से आ गए। बहुत बार कहते कि ये इनकी आदत खून की है, खून में ही इनके ये ऐसे करना स्वाभाविक है इनका, तो खून आपने बदल दिया, आपका खून ही चेंज कर दिया, इसका मतलब आपकी सारी ऊर्जा बदल गई। हम अंदर से सच्चे दिल से चाहते हैं कि हमसे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हो, लेकिन खून नहीं बदला हुआ, इसलिए यहाँ से नेगेटिव एनर्जी यहाँ फ्लो हो रही है ऊपर, वो आत्मा को बार बार इंट्यूशन कर रही है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसमें नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, वो बार बार आत्मा को, मतलब आत्मा ऐसी जगह बैठी है कि उसके चारों तरफ नेगेटिव हो रहा है। जब वो डिटैच रहती है खुद के स्वरूप में रहती है, तभी उस नेगेटिव ऊर्जा से वो, बाबा क्यों कहते हैं कि देहाभिमान सभी पापों की जड़ है, क्योंकि हम इस शरीर में जो बैठे हैं वो एक विकार से उत्पन्न हुआ है, पाप से जन्मा है, तो पाप से जन्मने के कारण वो सारे आत्मा जहाँ बैठी है जैसे कि पाप के पुतले में ही बैठी है। शरीर को हम नेगेटिव ऊर्जा नहीं दे रहे, गलत नहीं कह रहे, बाबा की ज्ञान के हिसाब से इसका अपमान नहीं कर रहे, शरीर को डिसरिगार्ड ही कर रहे, डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, लेकिन एक लॉजिकली आपको बाबा बता रहे कि आत्मा जहाँ बैठी है उसके चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा, किसकी, हमारी है, शरीर की ऊर्जा नहीं, वो हमारी ऊर्जा हमने भर के रखी, उसी ऊर्जा में हम बैठे, फिर हम हमारा कॉन्शियसनेस बदल देते कि हम शरीर है। अगर हम शरीर है तो शरीर का प्रकृति का, कलयुग की प्रकृति का स्वाभाविक नेचर है निगेटिव एक्ट करना। तो शरीर का भान आने से निगेटिव एक्ट अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि कलयुग की प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। तो इस प्रकार से अगर आत्मिक स्थिति में आते हैं तो शरीर का भी स्वाभाविक गुण बदलना शुरू हो जाता है। अब सोचिए ब्रह्मा बाबा को मम्मा को इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी आत्मिक स्थिति में आने के लिए, तो हमें कितनी करनी पड़ी।
विशिष्ट पॉइंट ऐसा विजुअलाइज